जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवन चारी जय कुंज बिहारी। जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा माधव गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी। गिरिवरधारि गोपी जन यशोदानन्दन जयो व्रज जनरञ्जन जय यशोदानन्दन जयो व्रज जनरञ्जन यामुनतीरवनचारि जय कुञ्ज विहारि जय यामुनतीरवनचारि जय कुञ्ज विहारि जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय निताय गौर हरिबोल हरिबोल जय जय प्रभुपाद 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 जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य स्तोत्र सत हे डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की ग्रंथरा श्रीमद भागवत महापुराण की निताय गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरियस टू श्री गुरु एंड गौरंग सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वांतोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आप सभी को आज के रविवार प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के कक्षा में हार्दिक स्वागत है। हम बहुत दिनों महीनों और साल के बाद आप सबसे मिल रहे हैं, बहुत प्रसन्नता हो रही है। तो श्रीमद् भागवतम का यह एक श्लोक है जो कि श्रीमद् भागवतम का गुणगान करता है और यह श्लोक की चर्चा करके हम ये आशा करते हैं यहाँ जितने भी उपस्थित सज्जन मातृवृंद भक्त वृंद हैं सबका श्रीमद् भागवत के ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होगी, वैसे तो है ही, और श्रद्धा भक्ति बढ़े। और इसको कैसे अनुशीलन करें और इसका क्या लाभ है ये सब हम सुनेंगे। तो शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम स्कंध 12 अध्याय क्रमांक 13। शीर्षक है श्रीमद् भागवत की महिमा। श्लोक संख्या 15। सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्रस्याद्रतिः क्वचित्। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। सर्ववेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। बोलिए। सर्ववेदांत समस्त वेदांत दर्शन का सारम सार ही निसंदेह श्री भागवतम श्रीमद् भागवत इष्यते कहा जाता है। प्रभुपाद की जय। कहा जाता है कि तत् इसके रस अमृत अमृतमय स्वाद से तृप्तस्य तृप्त होने वाले के लिए न नहीं अन्यत्र दूसरी जगह स्यात् हे रति ही आकर्षण क्वचित् कभी। अनुवाद श्रीमद् भागवत को दोहराइए। समस्त वेदांत दर्शन का सार कहा जाता है जिसे इसके अमृतमय रस से तुष्टि हुई है वह कभी अन्य किसी ग्रंथ के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तो इस श्लोक में श्रील श्रीधर स्वामी अन्वय करते हैं श्रीमद् भागवतम ही सर्व वेदांत सारम इष्यते। जो प्रथम लाइन इस बोर्ड पे लिखा गया है श्रीमद् भागवत ही सर्व वेदांत सारम इष्यते। श्रीमद् भागवत ही सभी वेद का सार माना जाता है या कहा जाता है। उसके बाद दूसरा चरण जो है तद् रसामृत तृप्तस्य ऐसे रसामृत को पान करके श्रवण करके जो व्यक्ति तृप्त हो गया है तृप्त व्यक्ति क्वचित् कभी किसी अन्यत्र रति न स्यात्। कभी भी किसी अन्य शास्त्र या पुराणों में उसका रुचि नहीं होगा रति नहीं होगा जिसका इसमें तृप्ति सेटिस्फेक्शन संतुष्टि रुचि हो गया है अन्य शास्त्र से इसका प्रेम लगाव नहीं होगा। तो आज हम इसका थोड़ी सी महिमा इतिहास और जो जो शास्त्रों में लिखा गया है वो हम सुनेंगे। पहले हम सुनते हैं ये इसका अर्थ क्या है। श्रीमद् भागवत श्रीमत श्री से युक्त श्री का अर्थ क्या है। हाँ ऐश्वर्य सौंदर्य और यश कीर्ति सौभाग्य और क्या कहेंगे हाँ और इत्यादि ये सब जो है श्री जो श्री से युक्त है इसको श्रीमत कहते हैं। तेजस ओजस ये सब भागवत इसका अर्थ क्या है। भग से युक्त है भगवत शब्द से भगवान आया है और भागवत भी आया है तो भगवत भगवत अर्थात भग से युक्त है। जैसे आप जानते हैं छह भग है ना छह ऐश्वर्य है ऐश्वर्य समग्र वीर्य सौंदर्य इत्यादि छह ऐश्वर्य से युक्त है षडैश्वर्य पूर्ण है। तो भगवत से फिर आता है भागवत। भागवत का अर्थ है भगवान और उनके भक्त उसको भागवत कहते हैं। तो ये सब श्री से युक्त हैं भगवान और उनके भक्त। तो यहां भगवान का साक्षात ये स्वरूप है जो हमारे सामने है। श्री राधा वृंदावन भगवान की जय। अब इस पूरे चर्चा में कई प्रश्न आएंगे, प्रश्न और उसके उत्तर। प्रश्न हम पूछेंगे, उत्तर आप देंगे, नहीं उत्तर हम भी देंगे, बाद में फिर आप पूछेंगे तो हम प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हम उत्थापन करते हैं कि कब से है श्रीमद् भागवतम इस संसार में, कब से है? अच्छा प्रश्न है ना। तो प्राय जैसे हम सुनते हैं कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की व्याख्या किए, लेकिन इसका सही उत्तर है अनादि काल से है। ये पुराण विद्या या श्रीमद् भागवतम वेद ये सब अनादि है। अनादि शब्द तो आप जानते ही हैं, जैसे हम अनादि हैं जीवात्मा, भगवान अनादि हैं, वैसे ये शास्त्र अनादि है। लेकिन इस रूप में जो हम आज देख रहे हैं, जो पूरे कार्टून में भर भर के सब डिस्ट्रीब्यूट होता है, या 18,000 श्लोक, इस रूप में नहीं था, इस रूप में विस्तार हुआ है, लेकिन है सदियों से, अनादि है। तो थोड़ा सा अगर पहले जाएंगे, पहले युगों में, मतलब मैं आपको कह रहा हूं प्राक वैदिक युग। प्राक वैदिक युग का अर्थ है सृष्टि जब से प्रारंभ हुई तब से। उस समय जैसे मान लीजिए सत्य युग, तो वह उस समय इसी को कहते थे पारमहंस संहिता या सात्वत संहिता, इसका नाम कुछ और था, पारमहंस संहिता या सात्वत संहिता, इसी का और एक नाम है। तो क्योंकि उस समय प्राक वैदिक युग में, सत्य युग में, प्राय सभी लोग हंस होते थे, और उनमें से जो श्रेष्ठ है वो परमहंस होते थे। ये वर्णाश्रम का इतना विभाजन उस समय नहीं था, ऑलमोस्ट सभी डिवोटी थे, सभी भगवान के भक्त होते थे सत्ययुग, प्राक वैदिक युग में जब सृष्टि प्रारंभ होती है। तो इसीलिए उस समय जो वो चर्चा करते थे भगवान के बारे में, उनके गुण लीलाओं के बारे में, उसी के अनुसार उसका नाम है पारमहंस संहिता या सात्वत संहिता। ये शब्द श्रीमद् भागवतम में भी आया है। सरल भाषा में संहिता का अर्थ है कंपाइलेशन, संकलित ग्रंथ, जिसको चर्चा करते थे वो, जिसमें भगवान और उनके भक्तों का वर्णन है, भगवान स्वयं, भगवान के उनके स्वयं भगवान और उनके अवतार और सारे भक्तों का वर्णन है, इसलिए इसको पारमहंस संहिता, सात्वत संहिता कहते हैं। त्रेता युग से पहले इसको इस तरह से माना जाता था, कहा जाता था, और इसको लोग अध्ययन, पठन पाठन ये सब करते थे। और प्राय उस समय जो लोग होते थे एकायन अवलंबी होते थे। अब सुनिए एकायन क्या होता है, एकायन और बहुआयन। एकायन वो होते हैं जो केवल एक को ही मानते हैं और एक के फॉलोअर हैं। और प्राय सत्ययुग में, प्राक वैदिक युग में सभी भगवान विष्णु के भक्त होते थे, इसलिए उनको एकायन कहा जाता है। इतने सारे जो विभाजित शास्त्रों का इतना नहीं था, देवी देवताओं का इतना प्रचार प्रसार ये सब नहीं था, तो इसलिए वो जो केवल जो विष्णु के भक्त होते हैं उनको एकायन कहते हैं। उसके बाद जब त्रेता युग प्रारंभ हुआ तो थोड़ा थोड़ा ये एकायन पद्धति शिथिल होने लगा, और उसमें वेद का विभाजन और फिर अलग अलग उपांग आदि सब होने लगा, और अन्य अन्य देव देवी देवताओं का पूजा पाठ ये सब विस्तारित होने लगा। था नहीं था ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट था भगवान विष्णु की भक्ति। लेकिन जैसे जैसे युग बढ़ा, त्रेता द्वापर, अब कली में तो कहना ही क्या है, गली गली में भगवान है, अब तो जानते हैं, अब कई बार तो भगवान के बीच में भी कंपटीशन हो जाता है कौन असली है, लेकिन उस समय ऐसे नहीं होते थे। तो अन्य पूजा, वेद विभाग, वेदांग आदि सब हुआ। तो ये है इतिहास श्रीमद् भागवतम का कि ये अनादि है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हु स्पोक, दूसरा प्रश्न है किसने कहा इसको। प्राय हम सब सुनते हैं कि जैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा, और पहले जाएंगे तो सर्वप्रथम किसने किसको कहा इस श्रीमद् भागवतम को, हाँ कौन, भगवान ने जी, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ये कहे, सुने हैं ना चतुर्श्लोकी भागवतम, स्वयं भगवान इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को कहे, तब तो संक्षिप्त रूप में, संक्षेप में था ये। और फिर आगे जाके ब्रह्मा ने नारद को और व्यास को ऐसे कहे। इसके अलावा और एक प्रमाण मिलता है जब आप ये पढ़ते हो श्रीमद भागवते महामुनि कृते, ये ध्यान आ रहा है महामुनि शब्द, इसका अर्थ सिद्ध स्वामीपाद बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं। वास्तव में श्रीमद भागवत पहले भगवान नारायण ऋषि ने कहा, याद आ रहा है नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ नरनारायण, सर्वप्रथम इस ज्ञान को भगवान श्री नारायण ऋषि ने कहा नारद को। अभी भी आप कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो वहां बद्री पंचायत है, पंचायत पंच, तो वहां नारद जी रहते हैं और उद्धव जी भी रहते हैं। तो सर्वप्रथम भगवान नारायण ऋषि ने इस ज्ञान को नारद जी को कहे, फिर नारद जी ने इसको व्यासदेव को कहे, फिर व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को, इस प्रकार ये भी एक परंपरा चली आ रही है। तो ये श्रीमद् भागवतम में हम प्राप्त करते हैं। और पहले स्कंद के चौथे अध्याय में, फर्स्ट कैंटो फोर्थ चैप्टर में प्रमाण मिलता है सात्वती श्रुति, एक शब्द आता है सात्वती श्रुति। तो ये जैसे हमने ये पढ़ा सर्व वेदांत सार ही, तो सारे वेद उपनिषद श्रुति का ये सार है, इसका प्रमाण पहले स्कंद के चौथे अध्याय में मिलता है। और पहले स्कंद में हम पढ़ते हैं निगम कल्पतरु, स्मरण आ रहा है निगम, आगम और निगम। तो ये वेद और उपनिषद जो है ये कल्प वृक्ष के समान है। फिर उसको क्या आगे क्या कहते हैं, गलितम फलम, पका हुआ फल है। तो सारे वेद उपनिषद का सार श्रीमद् भागवत है। तो ये इसमें श्रीमद् भागवत में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो आप पढ़ने पर आपको मिलेगा जो उपनिषद के श्लोक है, श्रुति के श्लोक हैं। ऐसा लगता है जैसे रिपीट हुआ है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सार है, कल्पतरु वृक्ष का पका हुआ फल है, सार है ये। तो ये एक प्रमाण है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा प्रश्न, श्रीमद् भागवतम क्या पूर्ण है? प्राय भक्त लोग पूछते हैं, कई बार ऐसे प्रश्न आता है, क्या सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम संपूर्ण भागवतम को बोले या कुछ अंश बोले? प्रश्न समझ में आता है ना? तो इसका उत्तर भी है, कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद के पहले श्लोक से लेके 12 स्कंद तक ये संपूर्ण है। लेकिन हमें जो प्राप्त होता है, हम देखते हैं कि एक श्लोक आता है 12वें स्कंद में, जगाम भिक्षु भी साकम नरदेवे न पूजितः। इस श्लोक के बाद 12 स्कंद के छठे अध्याय के बाद सुखदेव गोस्वामी चले जाते हैं, स्थान छोड़ के चले जाते हैं, और कई अध्याय है, आज हम 13 अध्याय पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम फिर सुखदेव गोस्वामी तो वहां से चले जाते हैं, फिर पूर्ण कैसे हुआ? और सुखदेव गोस्वामी अपियर कब होते हैं, आविर्भाव कब होते हैं, कब श्रीमद् भागवतम में आते हैं? पहले स्कंद के 19 चैप्टर 19वें अध्याय में प्रकट होते हैं, और उनका बोलना श्री सुखो वाच कब शुरू होता है? दूसरे स्कंद में, जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। तो ये मन में प्रश्न होता है कि जो पहले स्कंद में हम पढ़ते हैं और 12 स्कंद के 6 अध्याय के बाद जो पढ़ जाते हैं, तो क्या ये संपूर्ण है या केवल सुख प्रोक्तो उतना ही है जिसमें सुखदेव गोस्वामी आके बोले और चले गए? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसका समाधान आचार्यों के टीकाओं से मिलता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, अनागता आख्यानेन एव अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तेः। सिद्धार्थ स्वामी कहते हैं जो वृत्तांत उपस्थित नहीं था उसी भविष्यत विषय को ही लेकर संपूर्ण श्रीमद् भागवत का वर्णन है। फिर से कह रहा हूं, जो डिस्क्रिप्शन, जो वृत्तांत वहां उपस्थित नहीं था, अर्थात सुखदेव गोस्वामी के अपियर प्रकट, प्रकट मतलब श्रीमद भागवत में प्रकट होने से पहले जो भी था ये सभी को मिला के श्रीमद भागवतम कहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि फ्रम जन्मादस्य यत अन्नोयात, जन्मादस्य श्लोक से लेके अंतिम श्लोक तक विष्णुरात मुमुच्चत या नाम संकीर्तन यस्य, ये संपूर्ण श्रीमद भागवतम जो है एक कंप्लीट है, संपूर्ण है, और इसी को ही भगवान वेद व्यास ने सम्याप्रास नामक अपने आश्रम में अपने सुपुत्र श्रीमद श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाए थे। जन्मादस्य से लेके अंतिम श्लोक तक ये पूरा का पूरा भागवतम भगवान व्यासदेव ने अपने पुत्र को बड़े प्रेम से पढ़ाए थे, संपूर्ण भागवतम। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो अपने पिता से या गुरु से जो ज्ञान ग्रहण किए थे ये टोटल है, ये पूर्ण है। फिर उन्होंने उसी ज्ञान को ही, संपूर्ण ज्ञान को उन्होंने परीक्षित महाराज को सुनाया। जब सूत और गोस्वामी और सोनक आदि ऋषियों की चर्चा होती है बाद में नैमिषारण्य में, फिर ये सब जो आने वाले घटनाएं हैं भविष्य में आने वाले, अभी सुखदेव गोस्वामी आएंगे, परीक्षित महाराज को श्राप होगा, परीक्षित महाराज फिर सुकताल में जाएंगे, सुखदेव गोस्वामी आएंगे उनको भागवत सुनाएंगे, फिर वहां सूत गोस्वामी बैठे होंगे, सुखदेव गोस्वामी उनको दिखा के बोलेंगे और यही आगे जाके सोनकाद ऋषियों को भागवत सुनाएंगे। जो भी हम पढ़ते हैं ये ऑलरेडी पहले से लिखित है, पहले से व्यासदेव को पता था, त्रिकालदर्शी थे और पहले से रिटन है, व्यासदेव जी ने इसको संकलन किए थे, और ये घटनाएं फिर एक एक करके ऐसे होने लगे। हरे कृष्णा और एक प्रश्न सुनते हैं। बिफोर स्पीकिंग टू सुखदेव गोस्वामी श्रीमद भागवतम, सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद भागवतम व्यासदेव जी जो व्याख्यान किए, पढ़ाए, समझाए इतना विस्तार रूप से, उससे पहले वो किस रूप में था, कैसे था? सुखदेव गोस्वामी को कहने से पहले यही श्रीमद भागवतम किस रूप में, किस आकार में, किस नाम पे, ये सब कैसे प्रचलित था? ये तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है गरुड़ पुराण से, ये प्राय सभी भक्त जानते ही हैं, और जो नहीं जानते वो जान लेंगे। अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयम् गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहित, ये गरुड़ पुराण में श्लोक है। कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम जो हमें प्राप्त है, अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणाम, भगवान वेदव्यास ने जब ब्रह्म सूत्र की रचना की है इसका ये अर्थ है, परपोट है, व्याख्या है। भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत जब उन्होंने लिखा और जो हम महाभारत पढ़ते हैं इसका कंक्लूजन है, सार है ये भारतार्थ विनिर्णय। गायत्री भाष्य रूपोसो, जो लोग द्वितीय दीक्षा लिए हैं, गायत्री दीक्षा लिए हैं, ब्राह्मण दीक्षा लिए हैं, वो जानते हैं सबसे पहला गायत्री क्या है, ब्रह्म गायत्री। वैसे तो आजकल सर्वत्र प्रचलित हो गया है, इसका एक संस्था भी खुल गया है और कैसेट में तरह तरह के लोग गाने लगते हैं। वास्तव में वेद कहता है इसको उच्चारण करके गाना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, इसको उपांशु जप करना चाहिए। इसलिए जो लोग गायत्री जप करते हैं वो उपांशु जप करते हैं, मन ही मन करते हैं। तो ये गायत्री जिसमें आप जो लोग जानते हैं, प्राय तो सभी जानते हैं इसको, कौन नहीं जानते हैं पहले जो ब्रह्म गायत्री को, तो अंत पद है वर्गो देवस्य धीमहि, ये जो धीमहि शब्द है ध्यान आ रहा है, तो ये श्रीमद भागवतों के पहले श्लोक में है। बताइए तो कहां है पहला श्लोक, क्या है? हाँ, सत्यं परम धीमहि, इसलिए इसमें कहते हैं गायत्री भाष्य रूपोसो, बिल्कुल जो छंद जो गायत्री माता है, वेद माता गायत्री है, इसका अविकल स्वरूप है श्रीमद भागवतम, उसका समान अर्थ है श्रीमद भागवतम, वेदार्थ परिबृंहित, और वेद के निष्कर्ष है ये जिसमें व्याख्या विस्तारित हुआ है। उसी गरुड़ पुराण में कहते हैं पुराणानां सामरूपः साक्षात भगवतादितः। किसने बोला इसको, इस ग्रंथ को किसने कौन कहे? कहते हैं पुराणों में ये सामवेद के समान है। जैसे वेदों में सामवेद सर्वश्रेष्ठ है माना जाता है, पुराणों में ये सामवेद है। और साक्षात भगवतो दितो, साक्षात स्वयं भगवान ने इसको बोले हैं। अब बताइए कौन भगवान बोले हैं? अभी अभी आप थोड़े समय पहले बोल रहे थे, कौन भगवान बोले हैं? भगवान ब्रह्मा जी को बोले, स्वयं भगवान बोले ना। और भगवान नारायण किसको बोले? नारायण ऋषि किसको बोले? नारद जी को। तो इसलिए साक्षात भगवतो दितो, स्पोकन बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। इसके बारे में कहते हैं द्वादश स्कंध युक्तोयम, इसमें 12 स्कंध है, शत विच्छेद संयुत 100 विच्छेद है, ग्रंथ अठारह हजार श्लोक से युक्त है, श्रीमद भागवता विदः, इसी का नाम श्रीमद भागवत है। तो अभी देखिए सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान वेद व्यास ने समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए वेद का संकलन किए, ये सब है। इसलिए मैं देखिए शब्दों को ध्यान दीजिए, मैं संकलन कह रहा हूं, संकलन और रचना में अंतर है। संकलन किए, रिटन एंड कंपाइलेशन, इसलिए अनादि है। तो जब संकलन के सर्वप्रथम एक था, एक वेद, फिर उसको विस्तार किए, चार वेद, फिर उपनिषद। जब विस्तार करने की वजह से उनका नाम ही व्यास पड़ गया। व्यास शब्द का अर्थ है जो विस्तार करता है। थोड़ा बहुत संस्कृत जिनको ज्ञान है, जो समास और व्यास आप समझ सकते हैं, समास संक्षेप में, सूत्र में, व्यास विस्तार, उसको खोल के रखना। तो जब उन्होंने वेद शास्त्र, वेद ये सब संकलन किए, फिर उसके बाद उपनिषद, फिर ब्रह्म सूत्र उन्होंने लिखे, उसके बाद पुराण। वेद को समझ नहीं पाएंगे हम, इतना कठिन है, उसकी भाषा भी बहुत कठिन है। चार वेद अगर नाम भी याद रख ले बहुत बड़ी बात होगी। थोड़ा सा याद कीजिए तो कौन कौन से? ऋक, साम, यजुर, अथर्व, नाम जान ली बहुत अच्छा है, लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसको समझने के लिए, सरल भाषा में समझने के लिए, थोड़ा दृष्टांत देके घटनाओं को बोल के वेद व्यास जी ने पुराणों को रचना किए। विशेष करके कितने पुराण है? 18 पुराण है, सत्व रज तम से 18 पुराण है। और फिर महाभारत को रचना किए, पंचम वेद जिसको कहते हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि जितने भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा आदि देवता हैं प्रमुख, उन्होंने व्यासदेव जी की अनुमति से एक तराजू में सभी वेद उपनिषद को एक तरफ रखे। और व्यासदेव जी ने अंत में जो लिखा था, महाभारत को एक तरफ रखे, तो महाभारत भारी पड़ गया। इतना वो महत्वपूर्ण था कि सबका सार उसमें आ गया, 1,00,000 श्लोक से युक्त। ऐसा कहते हैं, कहावत है, लौकिक भाषा में भी कहते हैं, जो कहीं नहीं है वो महाभारत में है, इतना विस्तार है। और जो महाभारत में नहीं है और कहीं नहीं है, 1,00,000 से बहुत विस्तार से महाभारत लिखे। दृष्टांत देखे, ये सब राजधर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, ये सब को उन्होंने बहुत अच्छे दृष्टांत देके, दृष्टांत के द्वारा लिखे, विशेष करके कलयुग के लोगों के लिए जो इतने क्लिष्ट वेद उपनिषद को पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, इनके लिए। अब ये प्रश्न होता है कि श्रीमद् भागवतम फिर कहां लिखे और कब लिखे और कैसे था ये, है ना? देखिए जब वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे, तो क्या श्रीमद् भागवतम 18 में नहीं आता है? हाँ या ना? और फिर हम सुनते हैं कि वेद व्यास जी ने सभी लिखने के बाद फिर भी चिंतित थे, सुनते हैं ना ऐसे भागवत में, असंतुष्ट थे, नारद मुनि आके उनको ज्ञान दिए, उसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। जब वो पहले से लिख लिए थे फिर बाद में लिखने, ये क्या असंगत हुई ना? जब वेद व्यास जी पुराणों को लिखे थे, श्रीमद भागवत भी था, ये जीव गोस्वामी पाद अपने संदर्भ में कहते हैं। किस रूप में था सुनिए, सूत्र के रूप में था, संक्षेप में था। जब वेद व्यास जी ने ऐसे ध्यान पे बैठे, ध्यान में बैठ के भगवान को चिंतन करने लगे, एक सुंदर पद उनके मन में आया। जैसे आप सुनते हैं वाल्मीकि जी के मुख से जैसे एक श्लोक आया, वैसे वेद व्यास जी के मन में भी एक सुंदर छंद आया, और वो था जन्मादस्य यतो अन्ययात। और वेद व्यास जी देखे, ये बिल्कुल गायत्री के समान है। तो फिर उन्होंने उस श्लोक को सूत्र के रूप में लिखा। इसलिए ब्रह्मसूत्र का पहला सूत्र क्या है, जन्मादस्य यतः, और वो सूत्र है, और उसकी व्याख्या भागवत का पहला श्लोक है बहुत विस्तार से। तो पहले वेद व्यास जी ने रचना की थी या संकलन किए थे, लेकिन संक्षेप में सूत्र रूप में था। फिर भी जब वो इतने सारे शास्त्रों को, इवन महाभारत रचना करने के बाद भी असंतुष्ट थे, कभी कभी खुद राइटर, जो लिखने वाला लेखक भी कभी कभी भूल जाते हैं कि मैंने क्या लिखा, और फिर उनको याद दिलाना पड़ता है। तब नारद मुनि आए बाद में, जैसे हम पहले स्कंद में सुनते हैं, नारद मुनि आके उनको स्मरण दिलाए, आपने जो इतना सारा लिखा है इसमें सम्यक रूप से कंप्लीटली भगवान के, केवल भगवान, परम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का विस्तारित वर्णन नहीं हुआ है, कहीं थोड़ा थोड़ा है सूक्ष्म रूप में। जैसे मैंने कहा कि ये जो चार चरण है एक श्लोक में, पद है, कि गरुड़ पुराण में कहते हैं वेद सर्व क्या है वो अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय, ये चार को हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे श्रीमद भागवतम में चारों को संपूर्ण करता है। पहला है अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्रों का ये अर्थ है। वो कैसे होता है कि ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र, जैसे आपने बताया जन्मादशयत्य, इसका व्याख्या भागवत का पहला श्लोक, अन्न व्याधि तरस्त चरते सु अभिज्ञ स्वराट इत्यादि इत्यादि, हो गया ना ब्रह्म सूत्र का ये अर्थ, अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणाम। देखिए कोई भी शास्त्र अगर हम पढ़ते हैं समझते हैं तो अनुबंध चतुष्टय हमें जानना है। ये सुनिए, अनुबंध चतुष्टय एक उक्ति है, विषय, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है उसमें, विषय, उसके साथ क्या संबंध है, संबंध, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अविधेय, और अंत में लक्ष्य, प्रयोजन। तो किसी भी शास्त्र में चार का विशद वर्णन होता है। तो ब्रह्म सूत्र में विषय, संबंध, अविधेय और प्रयोजन इज इक्वल टू श्रीमद् भागवत का विषय, संबंध, अविधेय और प्रयोजन। इसलिए कहते हैं अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणाम, यह ब्रह्म सूत्र का अर्थ है श्रीमद् भागवतम, दोनों का चतुष्टय समान है। तो इस प्रकार वेद व्यास जी ने रचना की। जब उनको पहला श्लोक उनको समाधि में, उनको स्मरण में आया, फिर सूत्रों को रचना करके फिर उसको व्याख्या किए, विस्तारित किए। वेदों का तात्पर्य एक पद मन में उनके आविर्भूत हुए जो केवल गायत्री के समान अर्थ वाला था, क्योंकि उससे फिर वेद व्यास जी ने उसको विस्तार किए, व्याख्या किए, जैसे हमने अभी कहा। दूसरा है अर्थोयं ब्रह्मसूत्राणाम हो गया, भारतार्थ विनिर्णय, भारत मतलब यह महाभारत है, इसका प्रमाण मिलता है 3, 5, 12 मैत्रेय विदुर संवाद में इसका प्रमाण मिलता है, तीसरा स्कंद 5वां अध्याय के 12 नंबर श्लोक में विदुर जी मैत्रेय को कहते हैं भारत माह कृष्ण, मैंने विदुर जी मैत्रेय को कहते हैं, जब उनको प्रश्न पूछते हैं वो कहते हैं कि हे मैत्रेय, आप वेद व्यास जी के परम मित्र हैं, सखा हैं। वास्तव में मैत्रे और व्यासदेव बहुत क्लोज फ्रेंड थे, सखा थे। महाभारत पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे जितना व्यासदेव जी आके इन गौरवों को, विशेष करके उन मूर्ख दुर्योधन को समझाए थे, मैत्रेय जी भी आके बहुत बार समझाए थे। और मैत्रेय जी ने श्राप दिया था दुर्योधन को। दुर्योधन ने कितने सारे वैष्णव आशीर्वाद नहीं, श्राप कलेक्ट किए थे जानते हैं दुर्योधन को। जब सभी समझाने, मैत्रेय जी भी समझाने गए थे सभा में, तो दुर्योधन ने ऐसे जांग ठोक के उनका प्रतिकार किया था। मैत्रेय जी ने उसी समय कहे थे, तेरे उस जांग को भीमसेन का गदा ही जवाब देगा। मैत्रेय जी का श्राप था। तो मैत्रेय और व्यासदेव सखा थे, इसलिए विदुर जी कहते हैं कि आपके मित्र व्यासदेव आपके मित्र हैं, जिन्होंने महाभारत रचना किया और जिसमें बहुत सारे राजधर्म, दान धर्म, वर्णाश्रम धर्म, मोक्ष धर्म, ये सब रचना किए। दृष्टांत द्वारा अलग अलग कहानियों से भरा हुआ है महाभारत कथा। कुछ भी पॉइंट बोले तो उसके लिए एक स्टोरी, कुछ भी पॉइंट उसके लिए एक स्टोरी, कुछ बहुत सारे कथा कहानियों से परिपूर्ण है। तो उसमें जो शांति पर्व है महाभारत में, एक है ना शांति पर्व, भीष्मदेव जिसमें आज उनका जन्मोत्सव है, आज आप श्रीमान राधेश्याम प्रभु से सुनेंगे, कृष्ण रसायन में भीष्म स्तुति चल रहा है। तो उसमें जो शांति पर्व है उसमें एक प्रकरण है नारायणीय प्रकरण। केवल उसमें भगवान की गुणगान हुआ है, नाम रूप गुण लीलाओं का गुणगान हुआ है। पूरे महाभारत में बहुत सारे विस्तृत वर्णन है, लेकिन भगवान का वर्णन कहां है? बहुत कम, वो भी शांति पर्व में, जहां भीष्मदेव बोलते हैं उस समय भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं। तो ये संक्षेप में, लेकिन सम्यक रूप में नहीं था, इसलिए वेद व्यास जी ने उसको जूम करके महाभारत में जो है भगवान का गुणगान उसको विस्तार किए श्रीमद् भागवत के रूप में। ये है भारतार्थ विनिर्णय, महाभारत का ये निर्णय है। तीसरा है गायत्री भाष्य रूपोस, गायत्री का ये भाष्य है। हम पूरा इसका अर्थ खोल के नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसा भी, जैसे मैंने कहा शुरू में कि वेद में कहा गया है कि इसको उच्चारण करके नहीं बोलना है। जो लोग द्वितीय दीक्षा नहीं लिए हैं उनके सामने ये सब कहना उचित नहीं है, दीक्षा लेने के बाद आप सब समझ। लेकिन एक छोटे मोटे शब्द कैसे वो भागवत से समान है हम देख सकते हैं। जैसे गायत्री में एक पद आता है भर्गो, याद आ रहा है भर्गो देवस्य, भर्ग, भर्ग का अर्थ है कि ज्योतिर्मय, तेजोमय। तो एक सामान्य अर्थ जो गायत्री का है कि प्राय जैसे संसार में प्रचलित है कि ध्यान करते हैं भगवान सूर्य नारायण को, सूर्य को, विवस्वान भगवान को, ये सामान्य अर्थ है। लेकिन इसका जो वैष्णव अर्थ है, भागवत पूरक अर्थ है कि जो भर्गो है वो हो सकता है सूर्य नारायण जो ज्योतिर्मय है, लेकिन भक्त जो वैष्णव है उसका अर्थ करते हैं कि वो ज्योति, जो ज्योति का स्रोत जहां से, वो है ब्रह्म ज्योति, वो है भर्गो। और पीछे जाएंगे तो वो जहां से आया है ब्रह्म ज्योति, जहां से आया है भगवान श्री हरि नारायण, तो वो जो गायत्री का है वो श्रीमद् भागवतम में है। वो कैसे है? जो तेज वाचक ज्योति है, स्वयं प्रकाश ब्रह्म ज्योति श्री विष्णु ही है। और वो जो है श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में परम शब्द आया है ना, क्या है वो लास्ट में? हाँ, जो परम है वो गायत्री का भर्गो है। इस तरह से वो समान थे, गायत्री का भाष्य ऐसे है, श्रेष्ठ है, सब सर्वश्रेष्ठ है। ओम तद विष्णु परमम पदम कहते हैं ना, ब्राह्मण श्लोक बोलते हैं, जो वो परम पद, जो परम है वो ब्रह्म ज्योति, जो इस ब्रह्मांड से भी परे है, जो भगवान का निज अंग कांति, उसको भक्त स्मरण करते हैं। भागवत के 12:6-67 इसी स्कंद के श्लोक में आता है, ओम नमस्ते भगवते आदित्याय, ये श्लोक आता है, ये पद आता है, ओम नमस्ते भगवते आदित्याय। तो यहां क्या, यहां इसका अर्थ यह है कि भगवान आदित्य को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, स्मरण करता हूं, ये सामान्य अर्थ है। वास्तविक अर्थ है, जो वैष्णवपूरक अर्थ है, कि भगवान विवस्वान जो है, जिनके अधिष्ठात्र देव हैं भगवान सूर्य नारायण, चतुर्भुजधारी नारायण जो सूर्य लोक में हैं, उनको मैं नमन करता हूं। आप भूगोल पढ़ेंगे 5वें स्कंद में, तो उसमें जो सूर्य लोक का वर्णन है, जो आज हमारे आंखों के सामने दिख रहा है ना सूर्य, जिनको प्राय सामान्य गायत्री जो जप करते हैं उनको स्मरण करते हैं, लेकिन जो वैष्णव अर्थ है कि उस सूर्य लोक में जो विवस्वान है, जिन जो पूजा करते हैं, जिनकी जो अधिष्ठात्र हैं, वो है सूर्य नारायण भगवान चतुर्भुजधारी, उनको हम स्मरण करते हैं, इसका अर्थ ये होता है। तो विवस्वान के भी जो परमात्मा है वो है सूर्य नारायण, भगवान श्री नारायण का स्वरूप है। तो गायत्री में जो वरेण्यम है, मैं क्षमा कीजिए थोड़ा सा विस्मृत हो गया, वरेण्यम शब्द भागवत में परम शब्द है। वरेण्यम एक आता है ना गायत्री में, वरेण्यम, तो वो है सर्वश्रेष्ठ जो है, और ये श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में परम सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार से और भी है, लेकिन मैंने कहा ना, मैं सभी यहां वर्णन करना थोड़ा संकोच लगता है, क्योंकि सारे शब्द को बता नहीं जा सकता, लेकिन वर्णन है ऐसे। और चौथा है वेदार्थ परिबृंहित, वेदार्थ परि, वेद के अर्थ जिसमें समस्त वेदार्थ का विस्तार हुआ है, वो है श्रीमद् भागवत। वेद जिसको संक्षेप में सूत्र रूप में वर्णन करता है, वेद का श्लोक अगर कभी आप देखेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, सूत्र रूप में ऐसे है। तो उसी को ही कभी कभी परोक्ष भाव में, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली भगवान का वर्णन नहीं करता है, परोक्ष भाव में वर्णन करता है। श्रीमद् भागवतम उसी का ही सुविस्तार और सुस्पष्ट रूप से वर्णन करता है वेद के श्लोकों को। ऐसे श्रीमद् भागवतम का गुणगान अन्य पुराणों में भी किए हैं। जैसे आप देखिए, पहला श्लोक को अगर कोई लेगा, जन्मादस्य यतन्वयत् इत्यादि इत्यादि, सत्यं परम धीमहि, कहां है भगवान का नाम इसमें, बताओ कहां है कृष्ण, कहां है राम? आप कह रहे हो भगवान की भक्ति करने चाहिए, यहां तो कुछ भगवान का नाम है नहीं, कहां है भगवान का नाम? सत्य, जो सत्य शब्द है ना, वो भगवान है। फिर उसको हम दशम स्कंद के गर्भ स्तुति से ले सकते हैं, सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम, सारी देवताएं आके मथुरा के कारागार में, जेल में जब स्तुति करते हैं माता को, देवकी को, पहला श्लोक में कहां है भगवान का नाम कोई प्रश्न पूछता है, तो उसका उत्तर यह है कि जो सत्य शब्द उसमें है वो सत्य कौन है, तो गर्भस्तुति में देवता लोग कहते हैं सत्य व्रत सत्य परम ति सत्यम, सत्य से सत्यम निहितम च सत्यम सत्यात्मकात्म, कई बार सत्य शब्द आया है, वो है परम भगवान श्री कृष्ण। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इसमें तो कोई भगवान का नाम है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करें। वैसे तो उससे पहले व्यास देव जी ने कह दिया है ओम नमो भगवते, हाँ जन्मादश से पहले ये ओम नमो भगवते वासुदेव शुरू होता है। तो अन्य पुराणों में कहाँ कहाँ वर्णन है, बहुत सारा जगह, पद्म पुराण में आप सुने होंगे, जो भागवत की कथा सुनते हैं ना, वो धुंधुकारी और गोकर्णी की कथा सुनते हैं ना, भागवत महात्म्य पद्म पुराण में है, और भी आपने श्रीमान सार्वभौ से सुने होंगे, भागवत महात्म्य स्कंद पुराण में भी है ना, जैसे द्वारका के 16,100 रानियों को सबसे पहले उद्धव जी ने एक महीना तक भागवत कथा किए थे, कहां किए थे? कुसुम सरोवर में। तो वो स्कंद पुराण में भागवत के महात्म्य है, अग्नि पुराण में भागवत के महात्म्य, अनेक पुराणों में भागवत के महात्म्य है। माने आप इससे समझ सकते हैं, जब वेद व्यास जी पुराणों को रचना किए, अन्य पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण महापुराण भागवत का गुणगान किए हैं। जैसे एक एकांत श्लोक में हम सुनते हैं, सत सो अध सहस्रैश्च किम् मन्ये शास्त्र संग्रही नजस्य तिष्ठते गेहे शास्त्रंग भागवतम कलो। कहते हैं कि इस कलयुग में सैकड़ों हजारों प्रकार के ग्रंथ, किताबें, बुक लाइब्रेरी की जरूरत क्या है। सत सौ अथ सहस्र किमन शास्त्र संग्रह। जिस घर में एक श्रीमद् भागवतम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नजस्य तिष्ठते गेहे शास्त्रंग भागवतम कलो। कलयुग में विशेष करके अगर किसको उद्धार प्राप्त होना है तो श्रीमद् भागवतम को रखना है। रखना है का अर्थ ये कभी ये नहीं सोचना चाहिए बस रखना है जसी आए तसी, और भी कुछ करना है। कई बार ऐसे सुनते हैं ना कि किसी के घर में गए तो श्रीमद् भागवतम रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? एज इट इज, जसी आए तसी। और पूछने पर कहते हैं प्रभु जी वंस अपन ए टाइम श्रीमान राधेश्याम प्रभु हमारे घर में आए थे और भागवत को रखे थे, एक दिन एक बार एक युग में आए थे और भागवत को रखे थे। वैसे उनकी महती कृपा है कि वो रखे थे, लेकिन उसके बाद को जो हमारी हमारा वो कर्तव्य है ना कि पैकेट को खोलना है, पैकिंग को खोलना है ना, पैकिंग को खोलना है और अध्ययन करना है स्वयं। हमने सुना है, बहुत अच्छा लगा यह सुन के, ये बात मंदिर में सुन के कि मंदिर में अभी भागवत की कक्षाएं शुरू हो रही है, जिसको कहते हैं क्या, भक्ति वैभव। तो मंदिर के निवासी भक्त तथा कांग्रीगेशन सबके लिए क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं भक्ति वैभव, जिसमें हम सब भागवत को पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए एक बात तो ये हमें समझना है कि भागवत को घर में रखना है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बार पैकिंग खोल के पढ़ना भी है और एक बार रेंडमली तो एक बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा जरूरत नहीं है। हमारे उड़ीसा में उड़िया भाषा में कहावत है कि रुच न रुच खाओ पीता, बूझ न बूझ पढ़ो गीता। अच्छा लगे या ना लगे, पीता मतलब कड़वा थोड़ा बहुत खाना चाहिए नीम, लेकिन सेहत के लिए अच्छा है, जीवा के लिए अच्छा नहीं। बूझ ना बूझ पढ़ गीता, समझ में आए या ना आए रोज गीता को पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वैसे ही पैकिंग खोल के भागवत को एक बार पढ़ लेना चाहिए। अगर आप यूट्यूब में देखेंगे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज इस संसार छोड़ने से पहले भागवत को कैसे पढ़ना चाहिए, एक बहुत अच्छा 5 मिनट का वीडियो दिए थे। हमें पता नहीं था वो इतने जल्दी चले जाएंगे, लेकिन किसी भक्त ने शूटिंग कर दिए थे। बढ़िया से वो समझाते हैं पहले स्टेप में कैसे पढ़े, उसके बाद कैसे पढ़े, उसके बाद कैसे पढ़े, बढ़िया से वो बताते हैं। श्रीमद् भागवतम को एक बार पढ़ लेना चाहिए। और ये ऐसा अगर संधि मिलता है, जैसे मंदिर में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि भक्ति वैभव कोर्सेस होने जा रहे हैं, या तो आप मंदिर में आइए, नहीं तो आपके क्षेत्र में आप जहां रहते हैं वहां कुछ शुरू कर दीजिए ग्रुप स्टडी, तो वहां भी हमारे मंदिर के भक्त जाके डिस्कशन, क्या कहते हैं उसको, ग्रुप डिस्कशन, हाँ उस भागवतम स्टडी सर्किल वो भी कर सकते हैं, तो वो अवश्य है। या पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकं भागवतं मुने अष्टादश पुराणानं फलं प्राप्नोति मानव। इस श्लोक में कहते हैं जो व्यक्ति नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का पठन करता है, केवल श्रीमद् भागवतम का पठन करता है, पाठ करता है, पढ़ता है, अष्टादश पुराणानं फलं प्राप्नोति मानव, 18 पुराणों का फल उसको मिल जाता है केवल एक ग्रंथ को पढ़ के, श्रीमद् भागवत को पढ़ के। कितना सौभाग्य है, देखिए ये साक्षात भगवान है, तमादि देवम करुणा निधानम, ये साक्षात करुणा के सागर है भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम। तमाल वर्णम सुहितावतारम, इनका वर्ण कैसा है, तमाल वृक्ष के समान है। अपार संसार समुद्र सेतु, इस संसार को, अपार संसार समुद्र को पार करने के लिए सेतु है। भजामहे भागवत स्वरूपम, ऐसे भगवान के साक्षात स्वरूप वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत का मैं सेवा करता हूं, पठन भजन करता हूं, ऐसा कहते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु के अनुजाई हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। जैसे आप सुने होंगे बहुत प्रसिद्ध श्लोक है श्रीनाथ चक्रवर्ती के द्वारा रचित कि ఆరాధ్య భగవాన్ బ్రజేశ తనయ్య తద్ధామ బృందావనం రమ్యా కాచిత్ ఉపాసనా వ్రజవధు శ్రీమద్ భాగవతం ప్రమాణ అమలం. ఏ మహాప్రభు కా జితనే భీ సబ్ మహాప్రభు కే సంప్రదాయ మే ఆతే హై ఉన్కే లియే తో యే మూల్ గ్రంథ హై. జబ్ మహాప్రభు నే రూప గోస్వామి కో పాంచ్ మహాసాధన బతాయే, అనేక 64 మే సే పాంచ్ బతాయే, ఉస్మే క్యా కహతే హై జానతే హై రూప గోస్వామి పాద కో. ఔర్ రూప గోస్వామి పాద నే ఉస్కో వ్యాఖ్యా కియా భక్తి రసామో సింధు మే, సాధు సంగ, నామ కీర్తన, భాగవత్ శ్రవణ, మథురావాస, శ్రీమతి సదా సేవన్. ఉస్మే కవిరాజ్ గోస్వామి కహతే హై కృష్ణ ప్రేమ జన్మాయ్యా ఏ పాంచర అల్ప సంగ, థోడా సా భీ సంగ కరే తో యే సర్వోచ్చ సిద్ధి దే సక్తా హై. ఔర్ మహాప్రభు కహతే హై, రూప గోస్వామి పాద ఉస్కో వ్యాఖ్యా కర్తే హై, కేసే కరే సజాతీయ సయాశయ భక్తి అభజ్ఞ సాధు సంగ స్వతోవరే శ్రీమద్ భాగవత అర్థాస్వాదనం రసికై స. ఏసే కహతే హై, కేసే పడనా చాహియే కహతే హై కి సజాతీయ లైక్ మైండెడ్ డివోటీ కే సాథ్ బైఠనా చాహియే జో ఏక్ సంప్రదాయ కే హై, ఔర్ స్నిగ్ధ జో సౌమ్య హై, ఔర్ భక్తి అభిజ్ఞ జో హమ్సే ఉన్నత హై జ్ఞాన మే వయ మే ఏ సబ్ మే హమ్సే ఉన్నత హై ఉత్తమ హై, ఐసే భక్తోం కే సంగ మే బైఠ కే శ్రీమద్ భాగవతం కో కేసే పడనా చాహియే. శ్రీమద్ భాగవత అర్థ ఆస్వాదనం రసికై స, రసిక భక్తోం కే సంగ మే బైఠ కే శ్రీమద్ భాగవతం కే ఏక్ ఏక్ శ్లోక అర్థం కో ఆస్వాదన కర్నా హై. మతలబ్ సారే ప్రభుపాజీ కే భావార్థ ఔర్ ఆచార్యో కే టీకాఓ కో లేకే ఇతనా సుందర ఏక్ ఏక్ శబ్ద కేసే ఓపెన్ హోతా హై, రివీల్ హోతా హై, ఐసే అర్థం కో ఆస్వాదన కర్నా హై. ఏక్ తో రీడింగ్ కర్నా హై, ఏక్ బార్ కర్ లేనా చాహియే, లేకిన్ యహాన్ కహతే హై మహాప్రభు రీడింగ్ కీ బాత్ నహీ కరే, అర్థ ఆస్వాదనం భావార్థ కే సాథ్ వ్యాఖ్యా కర్కే ఐసే ఆస్వాదన కర్నా హై. తో యే పాంచ్ మహాసాధన మే హీ శ్రీమద్ భాగవత్ కో అగర్ కోయి నిత్య ప్రతిదిన శ్రవణ కర్తా హై, పఠన కర్తా హై, తో బాకీ జో చార్ సాధన బహుత్ హీ బఢియా హోతా హై. శ్రీమద్ భాగవతం కో అగర్ కోయి నిత్య ప్రతిదిన పాఠ కర్తా హై, నామ జప ఉస్కా అచ్చా హోగా, నామ సంకీర్తన బహుత్, క్యోంకి ఉస్మే నామ కా వర్ణన హై భాగవతం మే, ఉస్కో ప్రేరణా మిలేగా, నామ జప ఉస్కా అచ్చా హోగా. శ్రీమద్ భాగవత్ కోయి అగర్ నిత్య ప్రతిదిన పాఠ కర్తా హై తో డిటీ వర్షిప్ అచ్చా కరేగా వో, క్యోంకి శ్రీమద్ భాగవతం మే విగ్రహ సేవా కా భీ వర్ణన హై. ఆప్ వో దేఖతే వో కోనే మే కితనా సుందర వో ఫోటో లామినేషన్ లగాయా హువా హై రాధా వృందావన చంద్ర కి, ఉస్మే ఆప్ దేఖ సక్తే హై భాగవత్ కో శ్లోకో మే వర్ణన హై కేసే విగ్రహ కో ధ్యాన్ కర్నా హై. ఉద్ధవ్ గీతా మే తో భగవాన్ ఉద్ధవ్ కో ఏక్ చాప్టర్ పూరా డెడికేట్ కర్తే హై డిటీ వర్షిప్ కే లియే. అచ్చా విగ్రహ కి సేవా వో భక్త అచ్చా కర్ పాయేగా జో భాగవత్ కి శ్రవణ పఠన కర్తా హై. ఔర్ ధామ్ వాస్ ధామ్ కా మహాత్మ్య వో జానేగా, మథురా వృందావన్ జగన్నాథ్పురి నవదీప్ ధామ్ కా మహాత్మ్య శ్రీమద్ భాగవతం మే భూరి భూరి వర్ణన్ కియా గయా హై వో జానేగా. అచ్చా విగ్రహ సత్సంగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అసోసియేషన్ ఆఫ్ డివోటీ వో జాన్ పాయేగా. కేవల్ శ్రీమద్ భాగవతం కే స్వాధ్యాయ కర్నే సే నామ సంకీర్తన అచ్చా కరేగా, నామ జప్ డిటీ ఓర్సీ విగ్రహ సేవా భీ అచ్చా కరేంగే, సత్సంగ్ భక్తోం కా వాల్యూ క్యా హై వో జాన్ పాయేంగే భక్తోం కే సంగ్ మే రహనే కే, క్యోంకి శ్రీమద్ భాగవత్ మే భక్తోం కా సంగ్ హీ హై. ఔర్ ధామ్ కా మహాత్మ్య క్యా సబ్ కుచ్ జాన్ పాయేంగే, ఔర్ యే సబ్ ఏక్ శ్రీమద్ భాగవత్ మే నిత్య ప్రతిదిన శ్రవణ పఠన్ సే హో సక్తా హై. ఔర్ అంత మే భక్తోం సమయ హో గయా హై, ఏక్ వాక్య కహ కే మే విరామ్ దేతా హూం. హమారే సంస్థాపక ఆచార్య శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ నే హమే ఏక్ సుందర ఉపదేశ దియే హై, అగర్ ఉస్ ఉపదేశ కో హమ్ పాలన్ కర్తే హై తో ప్రభుపాద్ జీ కా యే వాక్య హై శ్రీమద్ భాగవతం మే పర్పోర్ట్ మే మే ఆప్కో సంఖ్యా భీ బతాతా హూం. 1:3:44 1:3:44 ఇస్ శ్లోక్ కే పర్పోర్ట్ మే ప్రభుపాద్ జీ కహతే హై అగర్ ఇస్ ఉపదేశ కో కోయి గ్రహణ కర్తా హై తో భగవాన్ జైసే విగ్రహ మే దిఖతే హై నా మందిర్ మే దిఖతే హై ఐసే గ్రంథ మే దిఖేంగే, గ్రంథ మే దిఖేంగే హమే పేజ్ మే అక్షరో మే దిఖేంగే. క్యా కహతే హై సునియే, ప్రభుపాద్ కహతే హై అప్నే తాప్తర మే సబ్సే పెహలే వ్యక్తి కో సాధక కో प्योर इन ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग होना है। अपने आहार निद्रा भय मैथुन जो भी जो बेसिक नेसेसिटी है किसी भी मनुष्य किसी भी प्राणी का, इसको शुद्ध करना है। शुद्ध इसमें शुद्धता लाना है, पशु के तरह नहीं रहना है, शुद्धता लाना है। जो ये करेगा आहार निद्रा इसमें शुद्ध होगा, उसका प्योर इन एक्शन होगा, उसके एक्टिविटी कार्यकलाप वो शुद्ध होगा। कनेक्शन समझ रहे ना? ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, ये जब हम शुद्ध करेंगे तो एक्शन हमारा कार्य शुद्ध होगा। फिर आगे क्या होगा? माइंड प्योर इन एक्शन, जब हमारा कार्यकलाप शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। प्योर इन माइंड होगा, हमारा मन शुद्ध होगा। और जब हमारा मन शुद्ध होगा तो फिर हियरिंग विथ रैप्ट अटेंशन, हम भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुन पाएंगे, श्रोता बनेंगे, श्रोता नहीं बनेंगे, श्रोता बनेंगे, एक्चुअली श्रोता बनेंगे। जिसका ये शुद्ध है, आहार निद्रा ये सब शुद्ध है, उसका कार्यकलाप शुद्ध है। जिसका कार्य एक्टिविटी शुद्ध है उसका मन शुद्ध है। जिसका मन शुद्ध है वो ध्यान पूर्वक सुन पाएगा, उसका मन डाइवर्ट नहीं होगा, 10 चीजों में नहीं लगेगा। यहां बैठ के भी मुंबई नहीं जाएगा या मतलब यहां बैठ के भी वो यहीं रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। और जिसका रैप्ट अटेंशन ध्यान पूर्वक जो सुनता है उसको लास्ट में प्रभुपाद कहते हैं यू विल सी कृष्णा इन द पेजेस ऑफ श्रीमद भागवतम। ऐसा व्यक्ति श्रीमद भागवत के पृष्ठ में भगवान को दिख पाएगा। जय ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, मिताई गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आइए हम श्री केशव प्रभु को धन्यवाद देंगे 3 बार हरि बोल बोलकर। हरि बोल, हरि बोल, हरि। सभी भक्तों को निवेदन है अनाउंसमेंट होने तक बैठिए।